योएल की पुस्तक और लाओदीकिया की सप्तम दिवसी एडवेंटिस्ट कलीसिया संख्या चार।
नंबर चार,
यशाया 28 में यरूशलेम पर शासन करने वाले उपहास करने वाले पुरुषों को इफ्राइम के पियक्कड़ों और घमंड का मुकुट के रूप में चित्रित किया गया है। मुकुट नेतृत्व का प्रतीक है और घमंड शैतानी स्वभाव का। मद्यपुंग की तुलना उस शेष बचे हुए अवशेष से की जाती है जो परमेश्वर की महिमा का मुकुट बनते हैं, क्योंकि अंतिम वर्षा के दौरान प्रभु अपना महिमा का राज्य स्थापित करते हैं, जिसका प्रतिरूप उन्होंने क्रूस पर अनुग्रह का राज्य स्थापित करके दिखाया था। क्रूस पर अनुग्रह का राज्य रविवार के कानून के समय महिमा के राज्य का प्रतिरूप है। अंतिम वर्षा नन 11 को शुरू हुई, जब 144,000 की मोहरबंदी और जीवितों का न्याय आरंभ हुआ।
मैंने देखा कि सभी अपने सामने आने वाले आसन्न संकट पर गंभीरता से नज़र लगाए हुए हैं और अपने विचार उसी पर केंद्रित किए हुए हैं। इसराइल के पापों को पहले ही न्याय में प्रस्तुत होना चाहिए। हर पाप का पवित्र स्थान में अंगीकार किया जाना चाहिए, तब कार्य आगे बढ़ेगा। ये अभी किया जाना चाहिए। क्लेश के समय शेष बचे लोग पुकारेंगे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिछली वर्षा उन पर आ रही है जो शुद्ध है, तब सभी उसे वैसे ही प्राप्त करेंगे जैसे पहले किया था। जब चारों स्वर्गदूत छोड़ देंगे, तब मसीह अपना राज्य स्थापित करेंगे। अंतिम वर्षा किसी को भी प्राप्त नहीं होती, सिवाय उन लोगों के जो अपनी पूरी शक्ति से सब कुछ कर रहे हैं। मसीह हमारी सहायता करेंगे। परमेश्वर की अनुग्रह से यीशु के लहू के द्वारा सब जयवंत हो सकते हैं। समस्त स्वर्ग इस कार्य में रुचि रखता है, स्वर्गदूत भी रुचि रखते हैं। स्पाल्डिंग एंड मगान 3।
प्रकाशित वाक्य की चार हवाओं को यशाया हबी एक कठोर पवन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसे पूर्वी पवन के दिन में रोक दिया गया था। ठीक वैसे ही जैसे प्रकाशित वाक्य की कलह की चार हवाएं चार स्वर्ग दूतों द्वारा रोकी हुई हैं। बहन वाइट द्वारा इन चार हवाओं की पहचान एक छूटकर निकल भागने को आतुर क्रोधित घोड़े के रूप में की गई है, जो मृत्यु और विनाश लाता है। चार हवाएं क्रमशः छोड़ी जाती हैं, नईमी 11 से शुरू होकर फिर रविवार के कानून पर अत्यधिक बढ़ाई जाती हैं, और जब मानवीय परख काल समाप्त होता है तब पूरी तरह मुक्त कर दी जाती हैं।
मुक्त और बंधित। सातवीं तुरही, जो तीसरी विपत्ति भी है, जो परमेश्वर के रहस्य के पूरा होने की घोषणा करती है, 9:11 पर भविष्यवाणी के तौर पर बज उठी जब इस्लाम को मुक्त किया गया, और फिर 9:11 के सबाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा भविष्य सु वहिंडो डेफलाइन का माता इश्माएल की माँ हागर रोक और मुक्ति का प्रतीक है। उसे सारा ने अब्राहम के साथ संतान उत्पन्न करने के लिए सारा द्वारा मुक्त किया। फिर जलन के कारण सारा ने ही उसे रोका, जिससे हागर भाग गई, जब तक कि एक स्वर्गदूत ने हागर को भागने से रोका और उसे लौटने को कहा। इसहाक के जन्म के बाद हागर और सारा का कलह चलता रहा, जब तक कि अब्राहम ने दासी को निकाल बाहर कर दिया और इस प्रकार उस पर एक और रोक लगा दी।
इस्लाम के चार स्वर्गदूत प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 15 की 391 वर्षों और 15 दिनों की भविष्यवाणी की शुरुआत में मुक्त किए गए थे, और फिर 11 अगस्त 1840 को उन्हें बांध दिया गया।
और छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और मैंने परमेश्वर के सामने जो सोने की वेदी है उसके चारों सींगों में से एक आवाज़ सुनी, जो उस छठे स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कहती थी, महान नदी यूफ्रात में बंधे हुए चारों स्वर्गदूतों को छोड़ दे। तब वे चारों स्वर्गदूत छोड़ दिए गए, जो एक घड़ी, एक दिन, एक महीना और एक वर्ष के लिए तैयार किए गए थे, ताकि मनुष्यों के तीसरे भाग को मार डालें। प्रकाशित वाक्य 9:13-15।
9 नवंबर पर हमला करने के लिए तीसरी विपत्ति के इस्लाम को मुक्त किए जाने के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आतंकवाद के खिलाफ अपना विश्वव्यापी युद्ध शुरू किया और इस्लाम पर अंकुश लगाया। इस्लाम के प्रतीक इश्माएल का पहला उल्लेख ये दर्शाता है कि इश्माएल के वंशन हर व्यक्ति के विरुद्ध होंगे और हर व्यक्ति उनके विरुद्ध होगा।
और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख को सुन लिया है। और वो वन मानुष होगा। उसका हाथ सब मनुष्यों के विरुद्ध होगा और सब मनुष्यों का हाथ उसके विरुद्ध होगा, और वो अपने सब भाइयों के सामने निवास करेगा। उत्पत्ति सिहला 11:12।
इस्लाम वो शक्ति है जो अंत समय में होगी, जिसके विरुद्ध हर मनुष्य का हाथ होगा, और इस्लाम हर मनुष्य के विरुद्ध होगा, जैसा कि ये आज पूर्णतः सिद्ध हो रहा है। भविष्यवाणी के प्रतीक के रूप में इस्लाम का विशेष कार्य एक विश्व युद्ध लाना है। यह विषय एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कहानी से पुष्ट होता है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जातियों का क्रोधित होना के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
उस क्लेश के समय का आरंभ यहाँ उल्लिखित उस समय की ओर संकेत नहीं करता जब विपत्तियां उंडेली जानी शुरू होंगी, बल्कि उनके उंडेले जाने से ठीक पहले की एक छोटी अवधि की ओर संकेत करता है जब मसीह पवित्र स्थान में है। उस समय जब उद्धार का कार्य समापन पर होगा, पृथ्वी पर संकट आएगा और राष्ट्र क्रोधित होंगे, फिर भी उन्हें इतना रोके रखा जाएगा कि तीसरे स्वर्गदूत के कार्य में बाधा न आए। उसी समय अंतिम वर्षा अर्थात प्रभु की उपस्थिति से आने वाली ताजगी आएगी, ताकि तीसरे स्वर्गदूत की प्रबल वाणी को सामर्थ्य दे और पवित्र जनों को इस हेतु तैयार करे कि वे उस काल में डटे रह सकें जब अंतिम सात विपत्तियां उंडेली जाएंगी। प्रारंभिक लेखन 85।
उन दिनों में जब अंतिम वर्षा बरस रही होती है, मसीह अपनी महिमा का राज्य स्थापित करते हैं, जैसा कि दानियल की पुस्तक में दर्शाया गया है।
और इन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा, और वो राज्य किसी दूसरे लोगों को नहीं दिया जाएगा, परंतु वो इन सब राज्यों को चूर चूर करके उनका अंत कर देगा और वो सदा तक बना रहेगा। दानियल 2:34।
उन दिनों में जब मसीह अपनी महिमा का राज्य स्थापित करते हैं, मसीह की महिमा का मुकुट कहलाने वाले लोग उन पियक्कड़ों के विपरीत दिखाए गए हैं जो अभिमान का मुकुट पहनते हैं। हबक्कू का दर्शन, जिसे पट्टिकाओं पर लिखकर स्पष्ट करना था, एडवेंटिज्म के मूलभूत सत्यों की ऐतिहासिक गवाही को सजीव रूप से चित्रित करता है। हबक्कू की गवाही में योएल के लोग या तो अभिमान या महिमा को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, एक वे जो विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं और दूसरे वे जो अभिमान में ऊंचे उठे हुए हैं। दूसरे अध्याय की चौथी आयत इन दोनों वर्गों को संबोधित करती है और वे फरीसी और महसूल लेने वाले के प्रसिद्ध उदाहरण के समानांतर है। महसूल लेने वाला धर्मी ठहराया हुआ घर गया और फरीसी की आत्मा सीधी नहीं, क्योंकि वो ऊंची उठी हुई है।
देखो, जिसका मन घमंड से फूल गया है वो उसके भीतर सीधे नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। हबक्कूक 10:4।
अगले पद में हबक्कूक उस वर्ग को जिनके हृदय अभिमान से ऊंचे उठ गए हैं मदिरापी बताता है, और इस प्रकार यशाया और हबक्कूक द्वारा वर्णित मदिरापियों को अभिमान से जोड़ता है।
हाँ, ये भी कि वो दाख मदिरा के कारण अपराध करता है। वो घमंडी मनुष्य है, ना वो घर में ठहरता है। वो अपनी लालसा को अधोलोक के समान बढ़ाता है और मृत्यु के समान है और तृप्त नहीं हो सकता, परंतु वो सब जातियों को अपने पास इकट्ठा करता है और सब लोगों को अपने पास बटोरता है। हबक्कूक 2:5।
ये स्मरण रखने योग्य है कि हबक्कूक की ये आयतें केवल मिलराइट इतिहास में ही पूरी नहीं हुई, बल्कि उनकी पूर्ति एलन व्हाइट और एडवेंटिज्म के प्रारंभिक अग्रदूतों दोनों के बीच एक सामान्य विषय थी। मिलराइट इतिहास में चौथी आयत द्वारा दर्शाए गए विश्वास से जो धर्मी ठहराए गए थे, वे वही थे जिन्होंने पहली निराशा के संकट को सहा, जिसने विलंब का समय और बाबुल के पतन की घोषणा करने वाले दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के आगमन दोनों को चिह्नित किया। मिलराइट्स ने उस परीक्षात्मक इतिहास के भीतर ये समझा कि पूर्व वाचा के लोग, जो ऐतिहासिक रूप से प्रोटेस्टेंट रहे थे, बाबुल की पुत्रियां बन गए थे। वे प्रोटेस्टेंट सार्दिस की कलीसिया द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रोटेस्टेंट थे, जो वाचा के लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी, क्योंकि उनके पास नाम था जो चरित्र और वाचा संबंध दोनों का प्रतीक था, परंतु वे मरे हुए थे।
और सार्दिस की कलीसिया के दूत को लिख, ये बातें वो कहता है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। मैं तेरे कामों को जानता हूं। तेरा नाम है कि तू जीवित है, परंतु तू मरा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 3 बॉक
1844 की परीक्षण प्रक्रिया में, जो 19 अप्रैल को आरंभ हुई और तत्पश्चात 22 अक्टूबर को समाप्त हुई, जो इस परीक्षण प्रक्रिया में असफल हुए वे अहंकार से भर गए। और यदि हम केवल 5वीं आयत के बाद की आयतें पढ़ें तो वहां मानवीय घमंड की विशेषता पोप के अहंकार और आत्म महिमा मंडन के उदाहरण से प्रदर्शित की गई है। यह 20वीं आयत पर समाप्त होता है जहां यह घोषित किया गया है कि प्रभु अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी मौन रहे।
परंतु प्रभु अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने मौन रहे। हबक्कूक 2:20
हबक्कूक के 2 अध्याय का 2 पद 19 अप्रैल 1845 की पहली निराशा को दर्शाता है और अध्याय 20वें पद पर समाप्त होता है, जो स्पष्ट रूप से 22 अक्टूबर 1845 की ओर संकेत करता है जब प्रभु अचानक अपने मंदिर में आए।
29 अक्टूबर 1834 को 4 आगमन, पंक्ति दर पंक्ति।
हमारे महायाजक के रूप में मसीह का परम पवित्र स्थान में पवित्र स्थान के शुद्धिकरण के लिए आगमन, जिसका दृश्य दानियल 8:14 में प्रस्तुत किया गया है, मनुष्य के पुत्र का अति प्राचीन के पास आगमन जैसा कि दानियल 7:13 में वर्णित है, और प्रभु का अपने मंदिर में आगमन जिसकी भविष्यवाणी मलाकी ने की थी, ये सब एक ही घटना के वर्णन है। और यही बात मत्ती 25 में 10 कुंवारियों के दृष्टांत में मसीह द्वारा वर्णित विवाह के लिए दूल्हे के आगमन के द्वारा भी निरूपित की गई है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 6:14।
3री और 4थी आयतें उन 2 वर्गों की पहचान करती हैं जो 2री से 20वीं आयत तक वर्णित 19 अप्रैल 1844 से 22 अक्टूबर 1844 तक चलने वाली परीक्षण प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं। 4थी से 19वीं आयतें पापाई शक्ति को संबोधित करती हैं, सिवाय 14वीं आयत के जो 9 गार साल के समय प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 के स्वर्ग दूत के अवतरण के बाद आने वाले इतिहास को संबोधित करती है।
क्योंकि जैसे जल समुद्र को ढक लेता है, वैसे ही प्रभु प्रभु की महिमा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगी। हबक्कूक 2:3
मिलरवादी इतिहास में 2 स्वर्गदूत की परीक्षा की प्रक्रिया में उपासकों की 2 श्रेणियां विकसित हुई और 22 अक्टूबर 1:22 के संकट में वे प्रकट हुई। उस अंश में दुष्टों का जो चरित्र है वो पोपशाही का चरित्र है, और उस परीक्षा काल में विश्वास योग्य मिलरवादियों ने 2 स्वर्गदूत के संदेश के अनुरूप ये घोषित किया कि मिलरवादी संदेश को अस्वीकार करने के कारण प्रोटेस्टेंट कलीसिया रोम की बेटियां बन गई थीं। 19 अप्रैल से आरंभ होकर 22 अक्टूबर को समाप्त होने वाले विवाद में ही चरित्र प्रकट हुआ, या तो बेलशस्सर की तरह बाबुल के दाख मधु का घमंडी पियक्कड़, या बेलशस्सर के सामने दानियल की तरह अपनी आस्था से धर्मी ठहराया गया व्यक्ति। वही विवाद वो मंच है जहां वो नाटक उद्घाटित होता है जो संसार को 3 स्वर्गदूत के संदेश से जुड़ी अनंत वास्तविकताओं के प्रति जागृत करता है। मतवाले बनाम धर्मी की यह पृष्ठभूमि उस तर्क के संदर्भ में रखी गई है कि संसार को इन मुद्दों के विषय में कैसे प्रकाश मिलता है, क्योंकि यहोवा की महिमा का ज्ञान समुद्र को ढांपने वाले जल के समान पृथ्वी पर भर जाएगा। वो प्रबोधन न्यूगेरा से आरंभ हुआ। हबक्कूक के 2 अध्याय में दर्शाए गए इतिहास के अंत में प्रभु 22 अक्टूबर 1844 को अचानक अपने मंदिर में आ गए। उन्होंने ऐसा उस भविष्यवाणी की पूर्ति में किया जिसे उन्होंने दानियल अध्याय 8 के 14वें पद में पलमोनी के रूप में प्रस्तुत किया था।
पलमोनी
बाइबल के कैलेंडर के 7वें महीने के 10वें दिन, जो 1844 में 10वें महीने के 22वें दिन पड़ा, हबक्कूक 2:20 की पूर्ति हुई, और प्रतीकात्मक संख्या 220 उस अध्याय और पद में देखी जा सकती है जो स्वर्गीय पवित्र स्थान में मसीह के कार्य में एक व्यवस्थात्मक परिवर्तन की पहचान कराती है। 144,000 की एक भविष्य सूचक विशेषता ये है कि वे मेमने का जहां कहीं वो जाता है अनुसरण करते हैं। मसीह का अनुसरण करने का अर्थ है उसके वचन में उसका अनुसरण करना। उसके वचन में संख्या 220 प्रतीकात्मक रूप से दिव्यता और मानवता के संयोजन का प्रतिनिधित्व करती है, और उसी तिथि पर मसीह ने जो कार्य प्रारंभ किया वह अपनी दिव्यता को मानवता के साथ मिलाने का कार्य था। 1884 में 10वें महीने के 22वें दिन या प्रतीकात्मक रूप से 22 × 10 जो 220 के बराबर है, 22.10 = 220, या यूं कहें उस तिथि पर जो प्रतीकात्मक रूप से 220 के समतुल्य है, हबक्कूक 220 पूरा हुआ जब मसीह जांच पड़ताल का न्याय आरंभ करने के लिए पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान में चले गए। बालमोनी वो अद्भुत संख्या प्रश्न और उत्तर के भीतर स्थित है जो एडवेंटिज्म का केंद्रीय स्तंभ है, और अधिकांश एडवेंटिस्ट उस सत्य से पूरी तरह अनजान है।
वह पवित्र शास्त्रीय वचन जो अन्य सबसे बढ़कर एडवेंट विश्वास की नींव और केंद्रीय स्तंभ दोनों रहा था, ये उद्घोषणा थी 2300 दिनों तक, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। दानियेल 8:2-14, द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 409।
दानियेल अध्याय 8 के पद 13 और 14 ये दर्शाते हैं कि पद 13 में एक प्रश्न है जिसके बाद पद 14 में उसका उत्तर आता है। इब्रानी शब्द पल्मोनी का अनुवाद पद 13 में दैट सर्टन सेंट के रूप में किया गया है, और मसीह के उस विशेष नाम का अर्थ अद्भुत गणनाकर्ता या रहस्यों का गणनाकर्ता होता है। जब एलन व्हाइट ये पहचानती हैं कि 14वां पद एडवेंटवाद का केंद्रीय स्तंभ और आधारशिला है, तो वे इन दोनों पदों के प्रश्न और उत्तर को दैवीय महत्व देती हैं, जो ये मांग करता है कि मसीह अद्भुत गणनाकर्ता के रूप में मुख्य संदर्भ बिंदु होना चाहिए। बहन व्हाइट बार बार इस बात पर बल देती रहीं कि किसी भी अंश की केंद्रीय सच्चाई के रूप में मसीह को देखना कितना महत्वपूर्ण है, और 13वें और 14वें पदों में मसीह का प्रत्यक्ष प्रकटन है, वह विशेष संत जो पालमोनी है। जब एडवेंटिज्म ने 1863 में लैव्य व्यवस्था अध्याय 26 के 7 गुना को अस्वीकार कर दिया, तब उसने पालमोनी को अनदेखा कर दिया, क्योंकि प्रश्न उत्तर की भविष्यवाणी संबंधी संरचना मूसा के 7 गुना और दानियेल के 2300 दिन के परस्पर संबंध पर आधारित है। मूसा के 7 गुना अर्थात 2520 वर्ष और दानियेल के 2300 शाम और सुबह अर्थात 2300 वर्ष के बीच की भविष्यवाणी संबंधी कड़ी समय से स्थापित होती है, जिसे संख्याएं दर्शाती हैं, और अद्भुत गणनाकार उन्हीं प्रश्न और उत्तर के ठीक मध्य में है जो एडवेंटिज्म का केंद्रीय स्तंभ है। जिन्होंने योसेफुस की रचनाएं पढ़ी हो, उन्हें उसके वे तार्किक तर्क याद होंगे जिनमें वो परमेश्वर द्वारा रची गई दो विशेष बातें पहचानता है, एक इब्रानी भाषा और दूसरी मापने योग्य समय, जिसके लिए गणित की आवश्यकता पड़ती है। 13वां पद पूछता है कब तक, वो पद कब नहीं बल्कि कब तक पूछता है। ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि प्रश्न अवधि के बारे में है, कब तक, या किसी समय बिंदु के बारे में, कब। पद 14 में उस प्रश्न का उत्तर या तो किसी समय बिंदु खुलने को चिन्हित करता है या किसी अवधि को, और संभव है दोनों को भी, परंतु उत्तर जो भी हो उसे पद 13 के प्रश्न के संदर्भ में ही रखा जाना चाहिए। वचन को ठीक रीति से विभाजित करने के लिए अर्थात पद 14 के उत्तर को ठीक से समझने के लिए प्रश्न के संदर्भ की सही समझ आवश्यक है। क्या वो कब है या तब। एफ्राम के मध्य पर अस्पष्ट रूप से ये सिखाते हैं कि पद 14 एक समय बिंदु की पहचान कर रहा है, जिसे वे 22 अक्टूबर 1844 के रूप में चिन्हित करते हैं, और जब वे ऐसा करते हैं तो वे संभवतः द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी से अभी अभी उद्धृत किए गए उसी खंड का हवाला देते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं और कभी विफल नहीं होता। कितने समय तक का प्रश्न अवधि की पहचान करता है, न कि किसी समय बिंदु की। 22 अक्टूबर 1844 से अन्वेषण न्याय की अवधि आरंभ हुई, और उस कार्य से संबंधित सत्य अनंत सुसमाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा मात्र उसके आरंभ की तिथि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हिब्रू व्याकरण स्पष्ट है, और वही अर्थ किंग जेम्स संस्करण में अनुदित किया गया है। केवल इतना ही नहीं कि व्याकरण प्रश्न को स्पष्ट रूप से अवधि के संदर्भ में रखता है, बल्कि कब तक का प्रश्न बाइबल की भविष्यवाणी का एक प्रतीक है। कई साक्ष्यों के आधार पर यह दिखाया जा सकता है कि कब तक का प्रश्न एक प्रतीक के रूप में 9 नवंबर से लेकर रविवार के कानून तक के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। हम पहले कब तक के प्रतीक पर विचार करेंगे, उसके बाद पलमोनी और योएल पर लौटेंगे।
कब तक? यशाया 6।
यशाया अध्याय 6 पद 3 में स्वर्गदूत घोषित करते हैं कि पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है।
और एक ने दूसरे से पुकार कर कहा, पवित्र 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 है सेनाओं का प्रभु, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। यशाया 6:3।
सिस्टर व्हाइट प्रकाशित वाक्य 18 के स्वर्गदूत के उतरने को तीसरी आयत के स्वर्गदूतों यदि के साथ जोड़ती है।
जब वे स्वर्गदूत उस भविष्य को देखते हैं जब सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भर जाएगी, तो स्तुति का विजयगान मधुर स्वर में एक से दूसरे तक प्रतिध्वनित होता है, पवित्र 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 है सेनाओं का प्रभु। रिव्यू एंड हेराल्ड 22 दिसंबर 1886।
यशाया नौग पर है और वो पूछता है कि उसे 9:11 का संदेश उन लाओदीकिया के लोगों के सामने जो देखना या सुनना नहीं चाहते कितने समय तक प्रस्तुत करना होगा। उसे बताया जाता है कि उसे तब तक डटे रहना है जब तक नगर डहा नहीं दिए जाते, और नगरों का ये विनाश रविवार के कानून से शुरू होता है जब राष्ट्रीय धर्म त्याग के बाद राष्ट्रीय विनाश आता है।
तब मैंने कहा, हे प्रभु कब तक? और उसने कहा, जब तक नगर उजाड़ होकर बिना निवासी न हो जाएं और घरों में कोई मनुष्य न रहे और भूमि सर्वथा उजाड़ न हो जाए, और यहोवा मनुष्यों को दूर दूर तक हटा दे और देश के बीच में बड़ा परित्याग हो, तो भी उसमें एक दशमांश रहेगा और वो लौटेगा, पर वो नाश किया जाएगा जैसे तेरेबिन का पेड़ और बलूत जिनमें अपने पत्ते गिराने पर भी ठूंठ बना रहता है, वैसे ही उसका ठूंठ पवित्र बीज होगा। यशाया 6:11-13।
नवंबर पर जब पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से प्रकाशित हुई, यशाया को अंतिम वर्षा का संदेश प्रस्तुत करने के लिए अभिषिक्त किया गया, और वो पूछता है कि कब तक उसे 9 नवंबर का संदेश उन लोगों को सुनाना है जिनके हृदय मोटे हैं। उत्तर है, जब तक रविवार का कानून न आ जाए, जब देश के बीचों बीच एक महान परित्याग होगा। ये महान परित्याग लाओदीकियाई एडवेंटवाद द्वारा किया जाता है, जिसे यशाया अध्याय 22 में शेबना के रूप में प्रस्तुत करता है।
देख, प्रभु तुझे भारी बंधुआई में ले जाएगा और निश्चय तुझे कसकर लपेटेगा। वो निश्चय तुझे गेंद की तरह उलट पुलट कर एक बड़े देश में फेंक देगा। वहां तू मरेगा और वहां तेरे वैभव के रथ तेरे स्वामी के घर की लज्जा बनेंगे, और मैं तुझे तेरे पद से हटाऊंगा और तेरी पदवी से वो तुझे नीचे गिरा देगा। यशाया 22:17-19।
लाओदीकियाई एडवेंटवाद रविवार के कानून के समय सत्य का परित्याग कर देता है और वहीं उलट दिया जाता है, जैसा कि दानियल अध्याय 11 पद 41 में दर्शाया गया है।
वो उस शोभायुक्त देश में भी प्रवेश करेगा और बहुत से देश परास्त किए जाएंगे, परंतु ये उसके हाथ से बच निकलेंगे, अर्थात एदोम, मोआब और अम्मोनियों के प्रधान लोग। दानियल 11:31।
जब यशाया पूछता है कब तक, तो उसे बताया जाता है कि वो संदेश एडवेंटिज्म को सीधे रविवार के कानून तक देता रहे। उस समय दानियल 11:43 के बहुतों उलट दिए जाएंगे जब वे सप्त और परमेश्वर को त्याग देंगे, तब उन्हें प्रभु के मुंह से उगल दिया जाएगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दर्शाया गया है, जहां बाइबल की सारी पुस्तकें मिलती और अंत पाती हैं, और जहां यशाया 22 में शेबना को हिंसापूर्वक एक बड़े देश में गेंद की तरह फेंका जाना, जब उन्हें हटाकर बहुत दूर कर दिया जाता है, दिखाया गया है। उस समय अवधि में शेष बचे हुए लोग, जिन्हें दसवां जो कि दशमांश है, लौटते हैं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उस खंड में उनकी तुलना उन वृक्षों से की गई है जिनमें सार तब भी बना रहता है जब पत्तियां झड़ जाती हैं। पत्तियां भविष्यवाणी के प्रतीकवाद में घोषित आस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब एडवेंटवाद रविवार के कानून पर आ पहुंचेगा और परमेश्वर के सप्त के स्थान पर सप्ताह के पहले दिन को स्वीकार कर लेगा, तो वे अपनी घोषित आस्था की पत्तियां झाड़ देंगे और अब ये दावा नहीं करेंगे कि वे परमेश्वर के सातवें सातों दिन के सप्त को बनाए रखते हैं।
अंजीर के पेड़ को शाप देना एक अभिनीत दृष्टांत था। वो बांज पेड़ अपनी आडंबरपूर्ण पत्तियों का दिखावा करते हुए स्वयं मसीह के सामने खड़ा, यहूदी राष्ट्र का प्रतीक था। उद्धारकर्ता अपने नीचों को इसराइल के विनाश का कारण और उसकी निश्चितता स्पष्ट करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने उस पेड़ को नैतिक अर्थ प्रदान किया और उसे दैवीय सत्य का व्याख्याता बना दिया। यहूदी अन्य सभी राष्ट्रों से अलग खड़े थे, परमेश्वर के प्रति निष्ठा की घोषणा करते हुए। उन्हें परमेश्वर से विशेष अनुग्रह मिला था और वे अपने आप को अन्य सब लोगों से बढ़कर धर्मी मानते थे, परंतु वे संसार प्रेम और लाभ लोभ से भ्रष्ट हो गए थे। वे अपने ज्ञान का घमन करते थे, पर वे परमेश्वर की अपेक्षाओं से अनभिज्ञ थे और कपट से परिपूर्ण थे। बांज पेड़ की तरह उन्होंने अपनी आडंबरपूर्ण डालियां ऊपर तक फैला रखी थी, दिखने में घनी भरी और देखने में सुंदर, पर उनका फल पत्तों के सिवा कुछ नहीं था। यहूदी धर्म अपने भव्य मंदिर, पवित्र वेदियों, मुकुटधारी याजकों और प्रभावशाली अनुष्ठानों के साथ बाह्य रूप से तो वास्तव में सुहावना था, पर नम्रता, प्रेम और परोपकार का अभाव था। अंजीर के बाग के सभी वृक्ष फल से रहित थे, परंतु पत्ते विहीन वृक्षों ने कोई अपेक्षा नहीं जगाई और इसलिए कोई निराशा भी नहीं हुई। इन वृक्षों द्वारा अन्य जातियों का प्रतिनिधित्व किया गया था। वे भी यहूदियों की तरह ही ईश्वर भक्ति से वंचित थे, पर उन्होंने परमेश्वर की सेवा करने का दावा नहीं किया था। उन्होंने भलेपन का घमंडपूर्ण दिखावा नहीं किया। वे परमेश्वर के कार्यों और मार्गों के प्रति अंधे थे। उनके लिए अंजीर का समय अभी नहीं आया था। वे अभी भी ऐसे दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें प्रकाश और आशा लाए। यहूदी, जिन्हें परमेश्वर से बड़े आशीर्वाद मिले थे, इन वरदानों के दुरुपयोग के लिए जवाबदेह ठहराए गए। जिन विशेषाधिकारों पर वे घमंड करते थे, उन्होंने उनका दोष ही बढ़ाया। द डिजायर ऑफ एजेस 582-583।
रविवार के कानून के समय, जब वे मृत्यु की वाचा का चिन्ह स्वीकार कर लेते हैं और जीवन की वाचा की मुहर को अस्वीकार कर देते हैं, तब लाओदिकियाई एडवेंटिज्म का ईश्वर की वाचा की प्रजा होने का दावा समाप्त हो जाता है। तब वे अपने दिखावे की पत्तियां झाड़ देते हैं और जो दृश्य में आता है वो यशाया द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया शेष जन है, जो 9:11 को पुराने मार्गों पर लौटे और यशाया ने अपने भ्रष्ट अनुभव को समझा तो वे धूल में नम्र किए गए और उसके बाद वेदी से लिए गए अंगारे से शुद्ध किए गए। सिस्टर व्हाइट हमें बताती है कि वेदी का अंगारा शुद्धिकरण का प्रतीक है, पर शुद्धिकरण तो बस वही है जो उस अंगारे के यशाया के होंठों को छूने से होता है।
दहकता अंगारा शुद्धिकरण का प्रतीक है। यदि वो होठों को स्पर्श करे तो उनसे कोई अपवित्र शब्द नहीं निकलेगा। दहकता अंगारा प्रभु के सेवकों के प्रयासों की सामर्थ्य का भी प्रतीक है। रिव्यू एंड हेरल्ड 16 अक्टूबर 1828।
अंतिम दिनों में वेदी से जो कोयले पृथ्वी पर फेंके जाते हैं वे वही कोयले हैं जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 की पहली 5 आयतों में सातवीं और अंतिम मोहर खुलने पर पृथ्वी पर फेंके जाते हैं। यशाया इसी प्रकार शुद्ध किए गए थे और इसलिए 144,000 भी जब कोयला उनके होंठों को छूता है शुद्ध किए जाते हैं। पर कोयला एक संदेश है, वो उनके होंठों को तब छूता है जब वे स्वर्ग दूत के हाथ से पुस्तक लेते हैं और उसे खाते हैं।
उन्हें अपने सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17।
जो लौटते हैं और शेष अवशेष मनते हैं, उन्हें ओक और टील के वृक्षों के रूप में निरूपित किया गया है। और जैसे मसीह ने वृक्ष को नैतिक गुणों से विभूषित किया और उसे देवीय सत्य का व्याख्याकार बना दिया, वैसे ही यशायाह के वृक्षों के भीतर नैतिक गुण सार द्वारा दर्शाए गए रूप में विद्यमान है। ये सार वृक्षों के साथ बना रहता है, भले ही वे लोग जो केवल अंगीकार की पत्तियां थे त्याग दिए जाते हैं। पवित्र बीज ही सार है और मसीह भविष्यवाणी का पवित्र बीज है। वे वृक्ष जो शेष के रूप में निरूपित है और जिन्हें स्वयं यशायाह ने 6 अध्याय में प्रस्तुत किया है, मनुष्यों अर्थात मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं और पवित्र बीज देवत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार यशायाह 6:9-11 से लेकर रविवार के कानून तक एडवेंटिज्म के शुद्धिकरण की पहचान करता है और उस भविष्यवाणी के इतिहास के लिए यशायाह द्वारा दिए गए विवरण उसके कब तक वाले प्रश्न द्वारा व्यक्त किए गए हैं। यशायाह के लिए कब तक का उत्तर 9:11 से लेकर रविवार के कानून तक था।
कितना समय? 1840-1844।
11 अगस्त 1846। 9 वेलर का प्रतीक था और 11 अगस्त 1846 से 22 अक्टूबर 1824 तक के भविष्यवाणी संबंधी इतिहास के साथ कर्मेल पर्वत पर एलिया और ईजेबेल के भविष्यद्वक्ताओं के बीच की लड़ाई हुई। अंततः बाल के भविष्यद्वक्ताओं को झूठा सिद्ध किया गया और एलिया ने उन्हें मार डाला। परंतु टकराव की बिल्कुल शुरुआत में एलिया ने यह प्रश्न किया, कब तक तुम दो मतों के बीच डगमगाते रहोगे?
और एलिया सब लोगों के पास आकर कहा, तुम कब तक दो मतों के बीच डगमगाते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो, परंतु यदि बाल है तो उसके पीछे चलो। और लोगों ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब एलिया ने लोगों से कहा, मैं ही अकेला यहोवा का भविष्यद्वक्ता बचा हूँ, परंतु बाल के भविष्यद्वक्ता 450 पुरुष हैं। 1 राजा 18:21-22।
एलिया 11 अगस्त 1845 को है, वो उस पीढ़ी से पूछ रहा है कि मिलराइट संदेश सत्य है या असत्य। ये लाओदिकिया के लिए एक और संदेश है, जैसा यशाया 6 था।
हजारों लोग विलियम मिलर द्वारा प्रचारित सत्य को ग्रहण करने के लिए प्रेरित हुए और परमेश्वर के सेवक एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में इस संदेश की घोषणा करने के लिए खड़े किए गए। यीशु के अग्रदूत यूहन्ना के समान इस गंभीर संदेश का प्रचार करने वालों ने अनुभव किया कि उन्हें कुल्हाड़ी वृक्ष की जड़ पर रखनी है और मनुष्यों को मन फिराव के योग्य फल उत्पन्न करने के लिए पुकारना है। उनकी साक्षी ऐसी थी कि वो कलीसियाओं को जगा दे और उन पर प्रबल प्रभाव डाले तथा उनके वास्तविक चरित्र को प्रकट कर दे। और जब आने वाले कोप से भागने की गंभीर चेतावनी सुनाई गई, तब बहुतों ने, जो कलीसियाओं से जुड़े हुए थे, उस चंगाई देने वाले संदेश को ग्रहण किया। उन्होंने अपने पथ भ्रष्ट हो जाने को देखा और मन फिराव के कड़वे आंसुओं तथा आत्मा की गहन व्यथा के साथ परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। और जब परमेश्वर का आत्मा उन पर ठहरा, तब उन्होंने इस पुकार को बुलंद करने में सहायता की, परमेश्वर का भय मानो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। एडली राइटिंग्स 33:47।
एक ताक से 44 के परी काल में जिन प्रोटेस्टेंटों ने एलिया के संदेश को अस्वीकार किया, वे रोम की पुत्रिया बन गए और प्रोटेस्टेंटवाद का चोगा मेलरवादी एडवेंटवाद को सौंप दिया। यशाया और एलिया के साथ हमारे पास दो गवाह हैं जो इस तथ्य की गवाही देते हैं कि कब तक का प्रश्न उस इतिहास का प्रतीक है जो 9 फेबर से शुरू होकर रविवार के कानून पर समाप्त होता है। मिलरवादी इतिहास में 11 अगस्त 1820 9 फेबर से मेल खाता है और 22 अक्टूबर 1824 रविवार के कानून से मेल खाता है। जब स्वर्ग से आग उतरी और एलिया की भेंट को भस्म कर दिया, तब 12 पत्थर उस भेंट के साथ सब प्रकाशित हो गए और इस प्रकार 144,000 को प्रकाशित पत्थरों के रूप में दर्शाए गए एक ध्वज के रूप में चिह्नित किया गया। तब झूठे भविष्यद्वक्ताओं का वध एलिया ने किया, ठीक वैसे ही जैसे संयुक्त राज्य, जो झूठा भविष्यद्वक्ता है, रविवार के कानून के समय 6 राज्य के रूप में वध किया जाता है। यशाया 6:9 से लेकर रविवार के तक्के तक परमेश्वर के लोगों के बीच परीक्षण, शुद्धिकरण और परिशोधन की प्रक्रिया पर बल देता है। एलिया परमेश्वर के लोगों की लाओदिकियाई मनोवृत्ति को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही सच्चे और झूठे नबी के बीच और परिणाम स्वरूप सच्चे या झूठे संदेश के बीच भेद के प्रमाण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार 11 अगस्त 1840 से आरंभ होकर 22 अक्टूबर 1844 को समाप्त होने तक सार्दिस के काल के प्रोटेस्टेंटों पर एक भविष्यवाणी जन्य परीक्षा लाई गई और जैसे कर्मेल पर्वत पर आग ने 2 वर्ग उत्पन्न किए, वैसे ही 1844 में भी 2 वर्ग प्रकट हुए। परीक्षा की इस प्रक्रिया में एक वर्ग वे थे जो शीघ्र ही पूर्व वाचाजन बनने वाले थे और दूसरा वर्ग मिलरवादी एडवेंटवाद था जिसके साथ 22 अक्टूबर 1844 को परमेश्वर वाचा में प्रवेश करेगा। परीक्षा और विभाजन की ये अवधि अंगूरबाड़ी की कहानी है, क्योंकि इसी में मिलरवादी एडवेंटवाद को सच्चा नबी सिद्ध किया गया और उसी समय सार्दिसी प्रोटेस्टेंटवाद ने पतित प्रोटेस्टेंटवाद स्वतंत्रता पाची तक अपनी भूमिका निभाना शुरू की। जैसे बाल के भविष्य वक्ताओं का झूठ उजागर हुआ, वैसे ही पूर्व वाचा जन भी उजागर हुए और फिर मिलर वांतिंगमे ने उन्हें रोम की पुत्री के रूप में पहचाना। कर्मेल पर्वत की कहानी और मिलरवादियों के समय में उस इतिहास की पूर्ति यशाया 6 के लिए दूसरा साक्ष्य प्रदान करती है कि कब तक का प्रश्न उनक तक से लेकर रविवार के जनों की जनक दिखा और एथेमा देशा करस नियम को कर्मापन।
हे अब्राहम, इसहाक और इसराइल के प्रभु परमेश्वर, भविष्यद् वक्ता विनती करता है, आज ये प्रकट हो कि तू इसराइल में परमेश्वर है और कि मैं तेरा सेवक हूँ और कि मैंने ये सब काम तेरे वचन के अनुसार किए हैं। हे प्रभु, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान लें कि तू ही प्रभु परमेश्वर है और कि तूने उनका हृदय फिर से फेर दिया है। गंभीरता से बोझिल एक मौन सब पर छाया हुआ है। बाल के याजक आतंक से कांप रहे हैं। अपने अपराध से सचेत वे शीघ्र दंड की आशंका करते हैं। जैसे ही एलिया की प्रार्थना समाप्त होती है, वैसे ही बिजली की तेज चमक जैसी अग्नि की लपटें स्वर्ग से खड़ी की गई वेदी पर उतर आती हैं। वे बलि को भस्म कर देती है, खाई का पानी चाट लेती हैं और वेदी के पत्थरों तक को भस्म कर डालती है। ज्वाला की चमक पर्वत को प्रकाशित कर देती है और जनसमूह की आंखों को चकाचौंध कर देती है। नीचे की घाटियों में, जहां बहुत से लोग ऊपर के लोगों की गतिविधियों को चिंता और उत्कंठा के साथ देख रहे हैं, आग का उतरना स्पष्ट दिखाई देता है और सभी उस दृश्य को देखकर चकित रह जाते हैं। ये उस अग्नि के स्तंभ के समान प्रतीत होता है जिसने लाल सागर पर इसराइलियों को मिस्री सेना से अलग कर दिया था। पर्वत पर उपस्थित लोग अदृश्य परमेश्वर के प्रति भय भक्ति से भूमि पर गिरकर प्रणाम करते हैं। वे स्वर्ग से भेजी गई आग को देखते रहने का साहस नहीं करते। उन्हें भय है कि कहीं वे स्वयं ही भस्म न हो जाएं और एलिया के परमेश्वर को अपने पितरों के परमेश्वर के रूप में, जिसके प्रति उनकी निष्ठा है, स्वीकार करना उनका कर्तव्य है। ये बोध होते ही वे सब एक स्वर में पुकार उठते हैं, प्रभु ही परमेश्वर हैं, प्रभु ही परमेश्वर हैं। चकित कर देने वाली स्पष्टता के साथ ये पुकार पर्वत पर गूंज उठती है और नीचे के मैदान में प्रतिध्वनित होती है। अंततः इसराइल जाग उठा है, भ्रम से मुक्त है, पश्चातापी है। अंततः लोगों को दिखता है कि उन्होंने परमेश्वर का कितना बड़ा अपमान किया है। सच्चे परमेश्वर द्वारा अपेक्षित युक्तिसंगत सेवा के विपरीत बाल पूजा का चरित्र पूरी तरह प्रकट हो गया है। लोग ये पहचानते हैं कि जब तक वे उसके नाम को स्वीकार करने के लिए न लाए गए, तब तक ओस और वर्षा को रोके रखने में परमेश्वर का न्याय और उसकी दया दोनों थे। अब वे ये मानने को तैयार हैं कि एलिया का परमेश्वर हर मूर्ति से ऊपर है, भविष्यद् वक्ताओं और राजाओं 530s।
कब तक मूसा?
भविष्यवाणी के वचन में कब तक नामक प्रतीकात्मक प्रश्न पहली बार मूसा के समय मिस्रियों पर आई 8वीं विपत्ति में उठता है। 8वीं विपत्ति टिड्डियां हैं, इस्लाम का प्रतीक, जिन्हें पूर्वी पवन इस्लाम का प्रतीक के लेकर आती है।
और मूसा और हारून फिरौन के पास आए और उससे कहा, इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, तू कब तक मेरे सामने अपने आप को दीन करने से इनकार करेगा? मेरे लोगों को जाने दे ताकि वे मेरी सेवा करें, नहीं तो यदि तू मेरे लोगों को जाने देने से इनकार करेगा तो देख, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा और वे भूमि के मुख को ऐसा ढक लेंगी कि भूमि दिखाई न दे, और वे जो ओलों से बचा हुआ तेरे पास शेष है उसे खा जाएंगी और खेत में तेरे लिए उगने वाले हर पेड़ को खा जाएंगी, और वे तेरे घरों को, तेरे सब दासों के घरों को और सब मिस्रियों के घरों को भर देंगी। ऐसी बात जो न तेरे पिताओं ने न उनके पितरों ने जिस दिन से वे पृथ्वी पर हुए हैं आज तक देखी है। और वो मुड़कर फिरौन के पास से बाहर चला गया।
और फिरौन के सेवकों ने उससे कहा, ये मनुष्य
कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन पुरुषों को जाने दे ताकि वे अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा करें। क्या तू अब भी नहीं जानता कि मिस्र नाश हो गया है?
और मूसा और हारून को फिर से फिरौन के पास लाया गया और उसने उनसे कहा, जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करो, परंतु जो जाने वाले हैं वे कौन हैं?
और मूसा ने कहा, हम अपने युवाओं और अपने वृद्धों के साथ, अपने पुत्रों और अपनी पुत्रियों के साथ, अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के साथ जाएंगे, क्योंकि हमें प्रभु के लिए एक पर्व मनाना है।
और उसने उनसे कहा, प्रभु तुम्हारे साथ उसी प्रकार हो जिस प्रकार मैं तुम्हें और तुम्हारे छोटे बच्चों को जाने दूंगा। सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारे सामने अनिष्ट है। ऐसा नहीं, अब तुम में जो पुरुष हो जाओ और प्रभु की सेवा करो, क्योंकि यही तुमने चाहा था। और उन्हें फिरौन की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया गया।
और प्रभु ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा ताकि टिड्डियां उस देश पर चढ़ आए और देश की सारी वनस्पति, यहां तक कि ओलों ने जो छोड़ा था वो सब भी खा जाए। और मूसा ने अपनी लाठी मिस्र देश के ऊपर फैलाई और प्रभु ने उस देश पर पूरा दिन और सारी रात पूर्वी पवन चलाई और सुबह होने पर पूर्वी पवन टिड्डियों को ले आई और टिड्डियां मिस्र देश भर पर चढ़ आईं और मिस्र के सब प्रदेशों में ठहर गईं। वे अत्यंत भयानक थीं, उनसे पहले ऐसी टिड्डियां कभी न हुई थीं और न उनके बाद ऐसी होंगी, क्योंकि उन्होंने सारी भूमि का मुख ढक लिया, यहाँ तक कि देश अंधेरा हो गया। और उन्होंने देश की सब वनस्पति और उन वृक्षों का सब फल भी जिन्हें ओलों ने छोड़ा था खा लिया, और मिस्र देश भर में न तो वृक्षों में और न खेत की वनस्पतियों में कुछ भी हरा बचा।
तब फिरौन ने फौरन मूसा और हारून को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारे परमेश्वर यहोवाह के विरुद्ध और तुम्हारे भी विरुद्ध पाप किया है। अब इसलिए मैं विनती करता हूँ, इस बार ही मेरे पाप को क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वो इस मृत्यु को ही मुझसे दूर कर दे। तब मूसा फिरौन के पास से निकल गया और यहोवा से विनती की, और यहोवा ने एक अत्यंत प्रबल पश्चिमी पवन चलाया जिसने टिड्डियों को उड़ा ले जाकर लाल समुद्र में फेंक दिया, और मिस्र के सारे देश में एक भी टिड्डी न रही। निर्गमन 10:3-19।
पहले इब्रानियों का यहोवा परमेश्वर पूछते हैं, तू कब तक मेरे सामने नम्र होने से इनकार करेगा? और उसके बाद फिरौन के सेवकों ने फिरौन से फिर पूछा, ये मनुष्य कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? ये प्रश्न आठवीं विपत्ति के समय पूछा जाता है, जो कई कारणों से नववा ग्यारम्स के साथ मेल खाती है। दसवीं विपत्ति पहलौठों का वध है, जो क्रूस के साथ मेल खाती है, और उसके बाद लाल समुद्र के पास की निराशा आती है, जिसकी प्रेरणा क्रूस पर शिष्यों की निराशा से मेल खाती है, जो 1854 में मिलराइटों की महान निराशा के साथ मेल खाती है। वे तीनों साक्षी रविवार के कानून के साथ मेल खाते हैं। दसवीं विपत्ति ही रविवार का कानून है, और उससे दो विपत्तियां पहले आठवीं विपत्ति में टिड्डियां पूर्वी पवन के सहारे आईं। टिड्डियों ने पूरी पृथ्वी को भर दिया, ठीक वैसे ही जैसे आज इस्लाम जबरन आप्रवासन के माध्यम से अपना अंधकार फैलाकर पूरे संसार को हिला रहा है। मरुस्थलीय टिड्डी का लैटिन नाम लोकुस्ता माइग्रेटोरिया है, जो आप्रवासन के माध्यम से इस्लाम के प्रसार का प्रतिनिधित्व ही था, जिसका प्रतिरूप प्राकृतिक संसार में प्रवास के रूप में दिखाई देता है। नौवीं विपत्ति एक ऐसा अंधेरा थी जिसे महसूस किया जा सकता था।
और प्रभु ने मूसा से कहा, आकाश की ओर अपना हाथ बढ़ा ताकि मिस्र देश पर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार जो महसूस किया जा सके। तब मूसा ने आकाश की ओर अपना हाथ बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घना अंधकार छाया रहा। वे एक दूसरे को देख न सके और 3 दिन तक कोई अपनी जगह से उठा नहीं, परंतु इसराइलियों के सब घरों में प्रकाश था। निर्गमन 10:30।
कब तक के प्रतीकवाद में, जिसका प्रतिनिधित्व कर्मेल पर्वत और एलिया करते हैं, जब स्वर्ग से आग उतरती है तो एक भेद प्रकट होता है। एलिया के परमेश्वर ने वो किया जो बाल नहीं कर सकता था। मिलराइट इतिहास में ये भेद
पतित सार्दिसी प्रोटेस्टेंटवाद और मिलराइट एडवेंटिज्म के बीच किया गया था। मूसा के साथ ये भेद अंधकार या प्रकाश का था। इब्रानी घरों में प्रकाश था। यशाया हमें आगे बताता है कि जो मूसा की रेखा में प्रकाश नहीं रखते, जो एलिया द्वारा नाश किए जाते हैं और जो मिलराइट काल में प्रोटेस्टेंटवाद का चोगा खो देते हैं, वे एक लोग हैं जो वास्तव में सुनते तो हैं पर समझते नहीं, और वास्तव में देखते तो हैं पर पहचानते नहीं। तब इन लोगों के विषय में ये घोषणा की जाती है, इस लोगों का हृदय मोटा कर दे और उनके कान भारी कर दे और उनकी आंखें बंद कर दे। कहीं ऐसा न हो कि वे अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने हृदय से समझें और फिरे और चंगे हो जाए। काम करने को तैयार परंतु जो सुनना नहीं चाहते, उन्हें उपदेश देने की नियुक्ति से अभिभूत। तब यशाया ने कहा, हे प्रभु, कब तक? मिस्र की 10 विपत्तियों में से अंतिम 3 9:11 से लेकर रविवार के कानून तक के 3 चरणों की गवाही देती हैं। 11 अगस्त 1840 को प्रथम स्वर्गदूत के संदेश को शक्ति मिली और 19 अप्रैल 1844 को दूसरा स्वर्गदूत आया और 12-17 अगस्त को एक्सेटर कैंप मीटिंग में वो सशक्त हुआ और तीसरा स्वर्गदूत 22 अक्टूबर 1844 को आया। तीसरा स्वर्गदूत रविवार के कानून से मेल खाता है और इसलिए ये एक 3 चरणीय प्रक्रिया को चिन्हित करता है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय के बिना तृतीय हो ही नहीं सकता।
पहला और दूसरा संदेश 1843 और 1884 में दिए गए थे और हम अब तीसरे संदेश की घोषणा के अधीन हैं, परंतु इन तीनों संदेशों की घोषणा अभी भी की जानी है। सत्य की खोज करने वालों को उन्हें दोहराना आज भी उतना ही आवश्यक है जितना पहले कभी था। कलम और वाणी द्वारा हमें ये घोषणा करनी है, उनके क्रम को और उन भविष्यवाणियों के अनुप्रयोग को दिखाते हुए जो हमें तीसरे स्वर्गदूत के संदेश तक ले आती हैं। पहले और दूसरे के बिना तीसरा हो ही नहीं सकता। ये संदेश हमें विश्व को प्रकाशनों में, प्रवचनों में देने हैं, भविष्यवाणी के इतिहास की रेखा में वे बातें दिखाते हुए जो हो चुकी हैं और जो होने वाली हैं। चयनित संदेश पुस्तक 2:10 और 5:15।
मिस्र की 10वीं विपत्ति को प्रेरणा द्वारा क्रूस और उससे संबंधित उसके बाद की निराशा के साथ जोड़ा गया है। अतः 10वीं विपत्ति तीसरा संदेश है जिसके पहले भविष्य सूचक अनिवार्यता के अनुसार पहला और दूसरा संदेश होना चाहिए। 9 सितंबर के समय प्रभु ने फिरौन से पूछा, कब तक? और तुरंत बाद फिरौन के सेवकों ने भी पूछा, कब तक? जब मूसा ने परमेश्वर का कब तक वाला प्रश्न फिरौन तक पहुंचा दिया और सेवकों द्वारा मूसा के प्रश्न को फिरौन के सामने दोहराने से ठीक पहले मूसा एक मोड़ इस प्रकार दर्शाता है, वह मुड़ा और फिरौन के पास से निकल गया। एक्सोडस-6। 9 अगस्त पर एक भविष्य सूचक मोड़ था जिसका प्रतीक तब दिखा जब मूसा ने टिड्डियों का वो प्रकोप लाया जो पूर्वी पवन से आया।
ऐसे काल होते हैं जो राष्ट्रों और कलीसिया के इतिहास में निर्णायक मोड़ सिद्ध होते हैं। ईश्वरीय प्रबंध में जब ये विभिन्न संकट आते हैं तो हमेशा समय के लिए प्रकाश दिया जाता है। बाइबल एको, अगस्त 26, 1895।
अगली विपत्ति ने अंधकार या प्रकाश उत्पन्न किया, ये इस पर निर्भर था कि आप किस वर्ग में थे। 9:11 राष्ट्रों और कलीसिया के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। उस समय परमेश्वर की प्रजा को लौटकर पुराने मार्गों पर चलने के लिए बुलाया गया, परंतु उन्होंने उनमें चलने से इनकार किया और तुरही की ध्वनि पर ध्यान नहीं दिया। एलिया के बाद अंधकार और प्रकाश के बीच एक विभाजन किया गया और मूसा ने पूछा, कब तक? वो आगे उस अंश में कहती है,
ऐसे काल आते हैं जो राष्ट्रों और कलीसिया के इतिहास में निर्णायक मोड़ सिद्ध होते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था में जब ऐसे विविध संकट आते हैं तो उस समय के लिए प्रकाश दिया जाता है। यदि उसे स्वीकार किया जाए तो आध्यात्मिक उन्नति होती है, यदि उसे अस्वीकार किया जाए तो आध्यात्मिक पतन और पोत भंग होते हैं। बाइबल एको, 26 अगस्त 1895।
हम अगले लेख में कितने समय तक विषय को आगे बढ़ाएंगे?
मई 1837 में बोस्टन, मैसाचुसेट्स में एक जनरल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस बैठक के प्रारंभ में हेवरहेल के भाई चार्ल्स फिच और अपोलोस हेले ने दानियल और यूहन्ना की चित्रात्मक भविष्यवाणियां प्रस्तुत की, जिन्हें उन्होंने भविष्य सूचक संख्याओं सहित कपड़े पर चित्रित किया था, उनकी पूर्ति दिखाते हुए। कॉन्फ्रेंस के सामने अपने चार्ट से समझाते हुए भाई फिच ने कहा कि इन भविष्यवाणियों का अध्ययन करते समय उनके मन में ये विचार आया कि यदि वे यहाँ प्रस्तुत की गई जैसी कोई चीज तैयार कर सकें तो विषय सरल हो जाएगा और उसे श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करना उनके लिए आसान होगा। ये हमारे मार्ग पर अधिक प्रकाश था। इन भाइयों ने वही किया था जो प्रभु ने 2468 वर्ष पहले हबक्कूक को उसके दर्शन में दिखाया था, ये कहते हुए, दर्शन लिख और उसे पट्टों पर स्पष्ट कर ताकि पढ़ने वाला दौड़ते हुए भी उसे पढ़ सके, क्योंकि ये दर्शन अभी भी नियत समय के लिए है। हबक्कूक 2:2। विषय पर कुछ चर्चा के बाद ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस जैसे 300 चार्टों का लिथोग्राफ कराया जाए और ये शीघ्र ही कर दिया गया। उन्हें द 43 चार्ट्स कहा गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन था जो सेफ बेट्स की आत्मकथा 317। मैंने देखा है कि 1835 में चार्ट प्रभु के हाथ द्वारा निर्देशित था और ये कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, कि वे संख्याएं वैसी ही थीं जैसी वो चाहता था, कि उसका हाथ उन संख्याओं में से कुछ में एक भूल पर रहा और उसे छिपाए रहा ताकि जब तक उसका हाथ हटा न लिया गया तब तक कोई उसे देख न सके। अर्ली राइटिंग्स 74। जब मूल विश्वास पर दृढ़ रहते हुए द्वितीय आगमन के व्याख्याताओं और पत्रों की सम्मिलित गवाही ये थी कि उस चार्ट का प्रकाशन हबक्कूक 2:2-3 की एक पूर्ति था, यदि वो चार्ट भविष्यवाणी का एक विषय था और जो इसका इनकार करते हैं वे मूल विश्वास को छोड़ देते हैं, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 2:30 दिनों की गणना के लिए ईसा पूर्व 45 ही वो वर्ष था जिससे तिथि आरंभ की जानी थी। ये आवश्यक था कि 1843 ही प्रथम प्रकाशित समय ठहरे ताकि दर्शन ठहरे अर्थात ठहरने का एक काल हो जिसमें कुंवारियों का दल समय के इस महान विषय पर ऊँघे और सोए रहे ठीक उससे पहले कि उन्हें मध्यरात्रि के पुकार से जगा दिया जाए। सेकेंड एडवेंट रिव्यू एंड सैबथ हेरल्ड वॉल्यूम आई नंबर 2 जेम्स वाइट।